एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत। आज हम एक ऐसे विचारक की बात करें जिनका नाम शायद हम सबने सुना ही होगा, सुकरात।
हाँ, सोक्रेटिस पश्चिमी दर्शन के पितामह माने जाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात पता है क्या है? इस आदमी ने मतलब अपने हाथ से एक शब्द तक नहीं लिखा।
सही बात है, फिर भी दुनिया भर के दर्शन पर उनका असर है।
वही तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुकरात आखिर थे कौन, किस तरह के माहौल में जी रहे थे, और सबसे जरूरी कि उनके विचार आज भी क्यों मायने रखते हैं, क्यों 2500 साल बाद भी वो प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल सही। और सुकरात सिर्फ एक दार्शनिक का नाम नहीं है, वो एक तरह से प्रतीक बन गए हैं।
प्रतीक किस चीज का?
बौद्धिक ईमानदारी का, सच को जानने की, वो जो कभी ना खत्म होने वाली प्यास होती है उसका, और अपने विचारों के लिए खड़े होने की हिम्मत का। उनका जीवन और खासकर जिस तरह उन्होंने मौत को स्वीकार किया, वो विचारों की ताकत का एक अद्भुत उदाहरण है।
तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उनके समय में। ये एथेंस का स्वर्ण युग, ये कब की बात है और कैसा था वो माहौल?
ये हम बात कर रहे हैं लगभग 470 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व के बीच की। वो एथेंस का कह सकते हैं शिखर का समय था।
अच्छा।
पेरिक्लीस जैसे नेता थे, लोकतंत्र अपने चरम पर था, पार्थेनॉन जैसी शानदार इमारतें उसी समय बनी।
हाँ, वो एक्रोपोलिस वाली।
वही, और कला, नाटक, सोफोक्लीस जैसे महान नाटककार उसी समय त्रासदियां लिख रहे थे। तो एक बहुत ही रचनात्मक, ऊर्जावान माहौल था।
लेकिन ये सब सिर्फ अच्छा अच्छा ही था या कुछ मुश्किलें भी थीं?
नहीं, मुश्किलें भी थीं, बड़ी मुश्किलें। इसी दौरान एथेंस और स्पार्टा के बीच वो भयानक पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था।
ओ हाँ, जिसने एथेंस को काफी कमजोर कर दिया था।
बिल्कुल, और सुकरात ने खुद एक सैनिक के तौर पर उस युद्ध में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने वो उथल पुथल भी देखी थी।
और बौद्धिक माहौल कैसा था? मतलब क्या और भी लोग थे जो सोच विचार कर रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे?
हाँ बिल्कुल थे, उस समय सोफिस्ट काफी मशहूर थे। ये वो शिक्षक थे जो पैसे लेकर सिखाते थे।
क्या सिखाते थे?
भाषण कला, तर्क वितर्क करना, बहस जीतना, और उनका अक्सर मानना था कि सच जैसी कोई एक ठोस चीज नहीं होती।
मतलब सब रिलेटिव है, सबका अपना अपना सच।
हाँ, कुछ वैसा ही कि सत्य व्यक्ति परक होता है। सुकरात इनके ठीक उलट खड़े थे। वो कहते थे कि ज्ञान बेचा नहीं जा सकता, और सच होता है उसे ढूंढा जा सकता है तर्क से।
अच्छा, तो एक तरह का टकराव था वहाँ।
हाँ बिल्कुल, और कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे। वो जो मशहूर नाटककार थे एरिस्टोफनीस,
हाँ,
उन्होंने अपनी एक कॉमेडी द क्लाउड्स में सुकरात का खूब मजाक उड़ाया था। उन्हें भी एक तरह का सोफिस्ट ही दिखाया था जो बस बातों के जाल बुनता है।
ये तो दिलचस्प है। तो सुकरात के अपने जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो इस दर्शन के रास्ते पर इतने पक्के तौर पर चल पड़े? वो डेल्फी वाली कहानी क्या है?
हाँ, वो कहानी बहुत अहम मानी जाती है। डेल्फी में अपोलो देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ भविष्यवाणी होती थी, ओरेकल कहते थे उसे।
हाँ, सुना है।
हाँ हाँ, तो किसी ने वहां जाके पूछा कि क्या एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई और है?
और जवाब क्या मिला?
जवाब मिला, नहीं, सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है।
सुकरात में जब ये सुना होगा तो
वो हैरान रह गए। उन्हें लगा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए वो एथेंस के उन लोगों के पास जाने लगे जो खुद को बड़ा ज्ञानी समझते थे,
जैसे कि नेता, कवि।
हाँ, नेता, कवि, कारीगर सब, और उनसे सवाल पूछना शुरू किया। न्याय क्या है, साहस क्या है, अच्छाई क्या है?
और क्या पता चला उन्हें?
पता ये चला कि ये लोग अपने अपने काम में तो माहिर थे, पर जब इन गहरी बातों पर सवाल किया जाता तो उनकी समझ खोपली निकलती थी। वो ठीक से बता नहीं पाते थे।
मतलब उनके ज्ञान के दावे झूठे थे।
हाँ, या कम से कम उतने मजबूत नहीं थे जितना वो सोचते थे। तब सुकरात को उस देववाणी का मतलब समझ आया।
क्या मतलब समझ आया?
कि उनकी बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं थी कि वो सब कुछ जानते थे, बल्कि इस बात में थी कि वो ये जानते थे कि वो नहीं जानते हैं।
अच्छा, जबकि दूसरे लोग इस भ्रम में थे कि वो जानते हैं।
बिल्कुल, दूसरे लोग अपनी अज्ञानता से ही अनजान थे, और यही एहसास अपनी अज्ञानता का ये ज्ञान सुकरात के दर्शन का केंद्र बन गया।
यही है वो उनकी मशहूर बात, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता।
हाँ बिल्कुल वही।
हाँ तो इसी सोच ने उनके दर्शन को ही दिशा दी होगी। तो उनके मुख्य विचार क्या थे, मतलब वो लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रहे थे?
देखिए, सुकरात ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उनसे पहले के जो दार्शनिक थे वो ज्यादातर किस चीज में लगे रहते थे?
ब्रह्मांड कैसे बना, दुनिया किस चीज से बनी है, तारे, ग्रह।
हाँ बिल्कुल, सुकरात ने कहा रुको, ये सब ठीक है, पर असली सवाल, सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है। असली सवाल है हमें जीना कैसे चाहिए।
एक अच्छा जीवन क्या है?
हाँ, उन्होंने दर्शन का ध्यान, कह सकते हैं, आसमान से हटाकर इंसान की जिंदगी, उसकी नैतिकता, उसके ज्ञान पर केंद्रित कर दिया।
और उनका वो जो सबसे प्रसिद्ध कथन है, बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है, उसका क्या मतलब है?
वो उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है एक तरह से। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, मतलब कि सिर्फ जी लेना काफी नहीं है।
खाना पीना सोना,
हाँ वो तो जानवर भी करते हैं। इंसान होने का मतलब है अपने जीवन को, अपने विश्वासों को, अपनी धारणाओं को लगातार जांचना, परखना, सवाल पूछना।
खुद से सवाल पूछना।
हाँ खुद से, मैं ये क्यों मानता हूँ, क्या ये सही है, मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या ये अच्छा है बुरा है। उनका मानना था कि बिना इस आत्मचिंतन के, बिना इस जांच परख के, जीवन का कोई असली मतलब नहीं है।
ये तो बड़ी गहरी और चुनौती भरी बात है, मतलब हम सब पर लागू होती है।
बिल्कुल।
और नैतिकता के बारे में उनके क्या विचार थे? मैंने सुना है वो मानते थे कि कोई जानबूझकर बुराई नहीं करता। ये बात आज के जमाने में थोड़ी अजीब नहीं लगती?
हाँ, ये उनका एक बहुत ही मौलिक और, जैसे आपने कहा, विवादास्पद विचार है। वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है।
इसका मतलब क्या हुआ?
उनका तर्क ये था कि अगर किसी व्यक्ति को सचमुच, मतलब गहराई से बताओ कि अच्छा या सही क्या है, तो वो वही करेगा, वो जानबूझकर गलत काम कर ही नहीं सकता।
लेकिन क्यों?
क्योंकि उनकी नज़र में गलत काम हमेशा अज्ञानता या गलतफहमी की वजह से होता है, बुरी नीयत से नहीं। जैसे अगर आपको पक्का पता हो कि ये जहर है और इसे पीने से मौत होगी, तो क्या आप जानबूझकर पियेंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बस, तो उनका मानना था कि नैतिक मामलों में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी को सच में पता चल जाए कि अन्याय करना या झूठ बोलना उसकी अपनी आत्मा के लिए कितना बुरा है, तो वो नहीं करेगा।
लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या लोग जानते हुए भी गलत नहीं करते, लालच में या गुस्से में या किसी दबाव में?
हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, और इस पर प्लेटो के बाद ही बहस होती रही है। शायद सुकरात का मतलब था कि अगर किसी को पूरी तरह से, मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि अंदर तक ये एहसास हो जाए कि कोई काम गलत है, तो उसकी आत्मा उसे रोक देगी।
अच्छा, इसीलिए वो आत्मा की देखभाल पर इतना जोर देते थे।
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमें पैसे, शोहरत या शरीर की चिंता से कहीं ज्यादा अपनी साइकी की चिंता करनी चाहिए, मतलब अपनी आत्मा, अपने चरित्र, अपने नैतिक स्वास्थ्य की। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की अच्छाई में है।
तो लोगों को इस ज्ञान तक, इस समझ तक पहुंचाने के लिए वो करते क्या थे? यही पर उनकी वो खास पद्धति काम आती थी, सुकराती पद्धति।
हाँ बिल्कुल, उसे एलेंकस भी कहते हैं। वो कोई लेक्चर नहीं देते थे।
तो फिर
वो सवाल जवाब करते थे एक खास तरीके से। मान लीजिए आप उनसे मिले और आपने कहा कि आप जानते हैं न्याय क्या है,
ठीक है,
तो सुकरात आपसे पूछना शुरू करेंगे, अच्छा न्याय ये है तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, क्या ये भी न्याय है। वो लगातार ऐसे सवाल पूछते जाते थे जिससे आपकी अपनी बातों के विरोधाभास सामने आ जाते थे।
मतलब वो आपको आपकी ही बातों में उलझा देते थे।
हाँ कह सकते हैं, पर मकसद उलझाना नहीं था, मकसद था कि आप खुद देखें कि आपकी समझ कहाँ कमजोर है, कहाँ अधूरी है, ताकि आप एक ज्यादा साफ, ज्यादा तर्कसंगत समझ तक पहुंच सकें।
सुनने में तो ये तरीका सामने वाले के लिए थोड़ा परेशान करने वाला भी लगता है।
होता था, बिल्कुल होता था। कई लोग चिढ़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, इसीलिए उनके दुश्मन भी बने। लेकिन सुकरात का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था।
वो तो मदद करना चाह रहे थे एक तरह से।
हाँ, वो चाहते थे कि लोग खुद सोचे, खुद सच तक पहुंचे। वो अक्सर एक और चीज इस्तेमाल करते थे, सोक्राती व्यंग्य, सोक्राटिक आयरनी।
वो क्या होता है?
मतलब वो अक्सर खुद को ऐसे दिखाते थे जैसे वो कुछ नहीं जानते। अरे भाई मैं तो मूर्ख हूं, मुझे समझाओ कि साहस क्या होता है। और फिर सवालों से सामने वाले के झूठे ज्ञान या दंभ को उजागर कर देते थे।
हाँ, ये तरीका तो आज भी बहुत काम का लगता है, खासकर सिखाने में।
बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए ये आज भी बहुत कारगर माना जाता है।
लेकिन ये सारी बातें, उनके विचार, उनकी पद्धति, ये सब हमें पता कैसे चली? आपने शुरू में कहा था उन्होंने खुद कुछ लिखा नहीं।
हाँ, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। इसे दर्शन की दुनिया में सुकराती समस्या।
सुकराती समस्या?
हाँ, क्योंकि सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा, तो हम उनके बारे में सिर्फ उनके शिष्यों के लिखे हुए से जानते हैं। मुख्य रूप से दो शिष्य, प्लेटो और ज़ेनोफोन।
प्लेटो तो खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे।
ओके, सुकरात और ज़ेनोफोन के सुकरात में कुछ फर्क दिखता है?
हाँ, थोड़ा फर्क है। आमतौर पे माना जाता है कि प्लेटो के जो शुरुआती संवाद हैं, जैसे अपोलोजी,
जिसमें उनके मुकदमे का वर्णन है,
हाँ, अपोलोजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, इनमें जो सुकरात दिखते हैं वो असल सुकरात के ज्यादा करीब माने जाते हैं। इनमें वो एक गहरे विचारक हैं जो नैतिकता, ज्ञान की परिभाषाएं ढूंढ रहे हैं, एलेंकस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ज़ेनोफोन?
ज़ेनोफोन का सुकरात थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक, थोड़ा ज्यादा जमीनी है, एक अच्छा नेक नागरिक। दोनों मिलकर हमें सुकरात की एक ज्यादा पूरी तस्वीर देते हैं, लेकिन वो समस्या तो रहती ही है कि असली सुकरात कौन था।
तो अगर हम सुकरात की तुलना करें उनके समय के दूसरे विचारकों से, जैसे आपने सोफिस्ट का जिक्र किया, तो वो सबसे अलग कैसे थे?
देखिए, दो मुख्य बातें हैं। एक तो उनसे पहले के जो ज्यादातर यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें हम प्री सुक्रेटिक्स कहते हैं,
हाँ,
वो किस चीज में रुचि रखते थे? दुनिया किससे बनी है? पानी से, हवा से, आग से?
हाँ।
ब्रह्मांड कैसे काम करता है? सुकरात ने कहा, ये सब ठीक है, पर असली मुद्दा इंसान है, हमें कैसे जीना चाहिए। तो उन्होंने दर्शन की दिशा ही बदल दी, फोकस बाहर से हटाकर अंदर कर दिया।
ये तो बहुत बड़ा बदलाव था।
हाँ, और दूसरा बड़ा फर्क था सोफिस्टों से। सोफिस्ट क्या सिखा रहे थे? बहस जीतना, पैसा कमाना। वो कह रहे थे, सच तो रिलेटिव है।
हाँ।
सुकरात कह रहे थे, नहीं, बहस जीतने के लिए नहीं, सच जानने के लिए करनी है, और सच रिलेटिव नहीं है। न्याय, साहस, अच्छाई जैसे मूल्यों की एक ठोस सार्वभौमिक परिभाषा हो सकती है, और हमें उसे तर्क से खोजना चाहिए, चाहे इसके लिए ये मानना पड़े कि हम अभी नहीं जानते।
तो उनका जोर सच की खोज पर था, ना कि सिर्फ बहस जीतने पर।
बिल्कुल, और ये ईमानदारी के मैं नहीं जानता, चलो मिलके खोजें, ये उन्हें सोफिस्टों से एकदम अलग करती थी।
ये सब बातें 2500 साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी सुकरात का नाम लिया जाता है। उनकी क्या प्रासंगिकता है आज के दौर में?
ओह, उनका असर तो जबरदस्त और स्थायी है। प्लेटो के जरिए वो समझिए पश्चिमी दर्शन की नींव बन गए।
अच्छा।
बाद के कई स्कूल जैसे स्टोइक थे, सिनिक थे, वो सीधे सुकरात से प्रेरित थे। फिर उनका असर मध्य युग के इस्लामी और ईसाई विचारकों पर पड़ा, पुनर्जागरण पर पड़ा, मतलब पश्चिमी विचार परंपरा में वो लगातार मौजूद रहे हैं।
ये तो हुआ दार्शनिक असर, लेकिन क्या व्यवहारिक तौर पर भी उनका कोई असर दिखता है आज?
हाँ, बिल्कुल दिखता है, कई क्षेत्रों में। जैसे मैंने कहा, उनकी जो सवाल जवाब की पद्धति है,
हाँ, एलिंकस,
वो आज भी इस्तेमाल होती है। कानून की पढ़ाई में वकीलों को जो जिरह सिखाई जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, वो उसी का एक रूप है।
अच्छा।
मनोविज्ञान में खासकर एक थेरेपी होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसमें मरीजों को उनकी गलत सोच पहचानने में मदद करने के लिए सुकराती प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा में, बच्चों में या छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सवाल पूछने और तर्क करने की क्षमता जगाने के लिए ये बेस्ट तरीकों में से एक माना जाता है।
और शायद आज के माहौल में, जहां हर कोई अपनी राय को ही सच मानता है।
बिल्कुल, आज के इस शोर शराबे वाले ध्रुवीकृत माहौल में सुकरात की ये बात कि भाई अपनी राय पर इतना गुमान मत करो, पहले उसे जांचो, परखो, सवाल पूछो, और ये मानने को तैयार रहो कि शायद तुम गलत हो, ये बौद्धिक विनम्रता शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
उनके कुछ मशहूर कथनों को थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसे, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सिर्फ कहने की बात थी या इसका कोई गहरा मतलब था?
नहीं, ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये उनके ज्ञान के सिद्धांत का, एपिस्टेमोलॉजी का सार था। जब डेल्फी की देववाणी हुई और उन्होंने तथाकथित ज्ञानियों से बात की,
हाँ,
तो उन्हें समझ आया कि असली ज्ञानी वो नहीं जो सब जानने का दावा करे, असली ज्ञानी वो है जो अपनी सीमाओं को जानता है, जो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। ये एहसास ही सच्चे ज्ञान की ओर पहला कदम है, बिना इसके आप सीखेंगे कैसे?
सही बात है, अगर आप मानते हैं कि आप सब जानते हैं तो फिर सीखने की गुंजाइश ही कहां बची।
बिल्कुल।
और वो दूसरा कथन कि केवल एक ही अच्छाई है, ज्ञान, और एक ही बुराई, अज्ञान, ये उसी सद्गुण ही ज्ञान है वाले विचार से जुड़ा है।
हाँ, ये उसी का दूसरा पहलू है।
अगर सद्गुण यानी अच्छाई ज्ञान से आती है तो जाहिर है कि बुराई या अनैतिकता कहाँ से आएगी?
ज्ञान की कमी से, मतलब अज्ञानता से।
बिल्कुल, उनके लिए नैतिक गलतियां असल में बौद्धिक गलतियां थी, समझ की कमी। अगर आपकी समझ सही हो जाए तो आपके काम भी सही हो जाएंगे। जैसा हमने पहले कहा, इस पर बहस हो सकती है कि क्या ये हमेशा सच होता है, लेकिन ये दिखाता है कि सुकरात नैतिकता को कितनी गहराई से तर्क और समझ से जोड़ते थे।
सुकरात की अपनी शख्सियत भी बड़ी रंगीन लगती है। उनके बारे में कुछ और रोचक किस्से भी हैं, जैसे सुना है वो दिखने में कुछ खास नहीं थे।
हाँ, ये वर्णन मिलता है प्लेटो और ज़ेनोफोन दोनों के यहाँ कि उनकी आंखें थोड़ी बाहर को निकली हुई थीं, नाक चपटी थी, होंठ मोटे थे, पेट निकला हुआ था, मतलब यूनान में सुंदरता के जो पैमाने थे उससे बिल्कुल अलग।
लेकिन फिर भी लोग उनसे इतना प्रभावित थे?
हाँ, उनमें गजब का करिश्मा था। उनकी बातों में, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि लोग, खासकर नौजवान, उनकी तरफ खिंचे चले आते थे, घंटों उनकी बातें सुनते थे।
और वो उनकी कोई अंदर की आवाज थी, डेमोनियन, वो क्या चीज थी?
हाँ, ये भी एक रहस्यमय बात है। वो दावा करते थे कि उनके अंदर एक तरह का दैवीय संकेत या आवाज है जिसे वो डेमोनियन कहते थे।
वो आवाज क्या करती थी?
लेकिन ये कभी नहीं बताती थी कि क्या करना है, बस एक तरह की चेतावनी, एक नकारात्मक गाइडेंस। उन्होंने अपने मुकदमे में भी इसका जिक्र किया था कि इसी आवाज ने उन्हें राजनीति में जाने से रोका था।
अच्छा, और वो सैनिक भी रहे थे तो क्या शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत थे?
ओह, कमाल के। प्लेटो के सिंपोजियम संवाद में एक किस्सा है। एक पात्र बताता है कि कैसे एक सैन्य अभियान के दौरान कड़ाके की बर्फबारी में सब ठिठुर रहे थे, लेकिन सुकरात नंगे पैर बर्फीली जमीन पर आराम से चल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
बाप रे, नंगे पैर?
हाँ, और वो घंटों गहरे ध्यान में खड़े रह सकते थे। ठंड, गर्मी, भूख, प्यास, इन चीजों का उन पर बहुत कम असर होता था। उनकी शारीरिक सहनशक्ति गजब की थी।
और उनकी पत्नी ज़ेंथिपे, उनके बारे में भी कुछ कहानियां हैं।
हाँ, मशहूर है कि ज़ेंथिपे बहुत गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव की थी। सुकरात मजाक में कहते थे कि अगर मैं ज़ेंथिपे को झेल सकता हूँ तो मैं दुनिया में किसी भी इंसान को झेल सकता हूँ। मतलब वो ऐसे भी एक तरह का अभ्यास मानते थे।
ये तो मजेदार है, लेकिन उनका अंत, वो बहुत दुखद था। उन पर मुकदमा क्यों चलाया गया और उन्हें मौत की सजा क्यों मिली?
हाँ, ये उनके जीवन का सबसे दुखद और नाटकीय अध्याय है। 399 ईसा पूर्व में, जब वो करीब 70 साल के थे, उन पर एथेंस की अदालत में मुकदमा चलाया गया।
आरोप क्या थे?
मुख्य रूप से दो आरोप थे। पहला, कि वो एथेंस के युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं।
भ्रष्ट
मतलब?
मतलब
मतलब ये कि वो उन्हें स्थापित मान्यताओं, परंपराओं, बड़ों का सम्मान करने के बजाय सवाल उठाना सिखा रहे हैं, जिससे वो गुमराह हो रहे हैं। और दूसरा आरोप था अधर्म का।
इम्पायटी?
अधर्म।
हाँ,
कि वो शहर के जिन देवताओं को सब मानते हैं उन्हें नहीं मानते और अपने कोई नए देवता गढ़ रहे हैं। शायद वो उनके डेमोनियन की तरफ इशारा कर रहे थे।
और जूरी ने उन्हें दोषी मान लिया?
खिलाना चाहिए जिंदगी भर। फिर संजीदगी से कहा कि वो शायद एक छोटा जुर्माना भर सकते हैं, लेकिन जूरी ने मौत की सजा ही चुनी, हेमलॉक नाम का जहर पीकर मरने की सजा।
हेमलॉक? लेकिन क्या वो भाग नहीं सकते थे? उनके दोस्तों काफी प्रभावशाली थे।
बिल्कुल, उनके दोस्तों ने जेल से भागने का पूरा इंतजाम कर लिया था। प्लेटो के क्रीटो संवाद में इसी पर चर्चा है। क्रीटो उन्हें भागने के लिए मनाते हैं,
लेकिन सुकरात ने मना कर दिया।
क्यों? हाँ, उन्होंने मना कर दिया। उनका तर्क था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के तहत बिताई है, इन्हीं कानूनों ने मुझे सुरक्षा दी, शिक्षा दी, सब कुछ दिया। अब जब यही कानून मेरे खिलाफ फैसला दे रहे हैं तो मैं भागकर उनका अपमान नहीं कर सकता। ये कायरता होगी और मेरे सारे जीवन के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
वाह, मतलब सिद्धांतों के प्रति ऐसी निष्ठा।
हाँ, उन्होंने बहुत शांति से अपने दोस्तों से आत्मा की अमरता जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए वो जहर का प्याला पी लिया।
ये सोचना भी मुश्किल है। तो क्या लगता है, आरोपों के पीछे सिर्फ यही वजह थी या कुछ राजनीतिक कारण भी थे?
बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि राजनीतिक कारण भी थे। एथेंस उस समय पेलोपोनेशियन युद्ध हारकर मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक अल्पकालिक तानाशाही 30 टायरेंट्स भी आई थी, जिसमें सुकरात के कुछ पूर्व शिष्य शामिल थे। तो शायद लोकतंत्र की बहाली के बाद सुकरात को उस पुराने दौर से जोड़कर देखा गया और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। आरोप शायद बहाना थे।
ये सब सुनकर तो सुकरात का जीवन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। वो लगातार सवाल पूछने की हिम्मत, अपने सच पर टिके रहने का हौसला और ज्ञान को जान से भी ज्यादा महत्व देना।
बिल्कुल, उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा दर्शन था शायद।
तो अंत में श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या सवाल छोड़ना चाहेंगे सुकरात से जुड़ा हुआ?
हाँ बिल्कुल, सुकरात की उसी गुत्थी पर लौटते हैं, ज्ञान ही सद्गुण है। यानी अगर आप जानते हैं कि क्या सही है तो आप वही करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या आज की इस जटिल दुनिया में ये बात हमें पूरी तरह सच लगती है? क्या सिर्फ किसी चीज का सही या गलत जानना ही हमेशा काफी होता है उसे करने या न करने के लिए? या फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारी भावनाएं जैसे लालच, डर, गुस्सा या फिर बाहरी दबाव, सामाजिक परिस्थितियां, ये सब भी हमारी नैतिक पसंद पर हावी हो जाते हैं? क्या ज्ञान हमेशा कर्म में बदल पाता है?
ये वाकई सोचने वाला सवाल है।
हाँ, सुकरात ने ये सवाल 2500 साल पहले उठाया था और शायद इसका जवाब हम आज भी अपने अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।